भावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया गर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोष्णे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को भागवत की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज सातवें दिन मरने वाले हैं, इसलिए तत्व ज्ञान से परिपूर्ण जिसमें सुख और शांति पाई जाए ऐसे भागवत की कथा को सुना रहे हैं। मैंने बाल्य चरित का कुछ आभास दिया, पर ब्रह्म होते हुए भी किस प्रकार से ब्रज में क्रीड़ा कर रहे हैं साधारण बालकों की भांति, किंतु बालक नहीं है। भगवान की दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक ऐश्वर्य लीला कहलाती है और दूसरा माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला उसको कहते हैं जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ऐसी अद्भुत लीलाओं को जो प्रकाश करते हैं जिसमें भगवत्ता प्रकाशित होती है, जो ये भगवान है पर ब्रह्म है, ऐसी लीलाओं को ऐश्वर्यमयी लीलाएं कहते हैं। और जिसमें ऐश्वर्य होने पर भी वो कुछ ढकी सी रहती है और मनुष्य की भांति जो लीलाएं होती हैं उनको माधुर्य लीला कहते हैं। द्वारका और मथुरा की कृष्ण की लीलाएं ऐश्वर्यपूर्ण हैं, उसमें भगवत्ता का भाव प्रधान होता है। मथुरा की लीलाओं में ऐश्वर्य प्रबल रहने पर भी माधुर्य इतना अधिक रहता है कि वह नर लीला को अतिक्रम नहीं करती। लीलाएं ठीक मनुष्य के बच्चों की भांति वो सब लीलाएं चलती रहती हैं। कृष्ण पुतना को मारते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं, अघासुर को मारते हैं, किंतु छोटे से बच्चे होकर के बड़ा धारण नहीं किया। गोवर्धन ने इतना बड़ा भारी गोवर्धन उठाया उन्होंने गिरिराज को, किंतु वही 5-7 वर्ष के बच्चे उस समय थे और हंसते हंसते खेल में ही उसे अपनी कानी अंगुली पर उठा ली। कानी अंगुली पर क्यों उठाई? इसलिए उठाई, कृष्ण के बाएं तरफ में राधा जी रहती हैं, बाएं भाग में। तो गोवर्धन का उठाने का तात्पर्य ये राधा जी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं उठाया। हम कुछ भी करते हैं शक्ति के द्वारा करते हैं, दृष्टि शक्ति लड़ने की शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब शक्ति कार्य करती है। कृष्ण की केवल इच्छा होती है और कार्य सारे शक्ति के द्वारा होती है। उनकी इच्छा हुई और उनकी शक्ति ने उठाया ये सबसे बाएं भाग वाला। इसलिए बाएं भाग में राधा जी रहती हैं, इसलिए राधा जी ने अलक्षित होकर के भी इस कार्य को किया है। इसलिए छोटे से बालक हंसते हुए मुस्कुराकर और गोवर्धन उनके हाथों में चला गया, किंतु किसी ने स्तुति नहीं की ये तू भगवान है। अर्जुन उनके मुख में, भगवान के मुख में विश्व रूप देखे और देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, जी भगवान मैंने आपको सखा कहा है, ये गलत कहा है। किंतु यहाँ पर सब लोगों के सामने इतना बड़ा भारी गोवर्धन पर्वत उठाया, किंतु किसी ने स्तुति नहीं की। क्यों? जितने गोप गोपी वृद्ध लोग थे उन लोगों ने सोचा नंद बाबा ने बड़ी अच्छी तरह से नारायण की उपासना की है, उनके फल से नारायण इसमें प्रवेश करके गोवर्धन उठाए, ये छोटा सा बच्चा क्या उठाएगा। और सखा जितने थे उन लोगों ने लठिया लगा ली अपनी अपनी सभी, कहते ये कृष्ण भार नहीं है, ये हमारे लठियों के ऊपर में टिका हुआ है। और गोपियां क्या कर रही हैं, जो छोटी किशोरी गोपियां अपने आंखों को लगाया, यदि गोवर्धन गिरा हम उसको तुम्हें भस्म कर देंगे, बस यहीं पर खड़े रहना। गोपियां समझते हैं कि हमने उठाया, कोई नहीं समझ रहा है कि ये कृष्ण ने उठाया। इंद्र ने 7 दिनों तक वर्षा की भरपूर, वज्रस पर चलाया किंतु कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, अंत में झुक गया उनके चरणों में। ये इंद्र पूजा को छोड़ा करके गोवर्धन की पूजा कृष्ण ने चालू की थी। ये गोवर्धन मेरा स्वरूप है, गो से गायों का वर्धन होता है। इंद्र क्या करता है, वो समझता है कि मैंने ये वर्षा दी और मैं ही सबका पूज्य हूं। कहे नहीं, कोई भी देवता अपना काम नहीं करता, कृष्ण की शक्ति से कार्य करता है। यदि किसी को कोई देवता वर भी देता है तो वह कृष्ण की शक्ति से वर देता है। शंकर जी राम राम कह करके और जगत को सब कुछ देते हैं, दुर्गा जी कृष्ण कृष्ण कह करके सब कुछ देती हैं। उनका अपना कोई भी शक्ति नहीं है, हमारी भी कोई अपनी शक्ति नहीं है जो कुछ कर सकते हैं। एक अंगुली भी हिलाने की शक्ति हमारे अंदर में नहीं है, मरते समय क्यों नहीं हिला लेता। इन्हें जो सब समझो, ये सारी शक्ति कृष्ण का वृथाभिमान मत करो, मैं धनी हूं, मैं मानी हूं, मैं बड़ा भारी पहलवान हूं, ये मत करो। हमारे यहां कुछ दिन पहले गामा नाम का एक पहलवान था, वो रशिया के सबसे बड़े पहलवान को भी उसने हरा दिया और विश्व विजयी गामा हो गया, किंतु जब मरने लगा तो एक गिलास पानी नहीं उठा सका अपने हाथों से, नहीं उठा सका। ये किसकी शक्ति है, उसमें शक्ति कहां चली जाती है। इसलिए कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है, इसलिए गीता में बतलाया देवताओं की जो उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं और फिर वहां से लौट आते हैं। भूत माने प्राणियों की जो पूजा करते हैं प्राणी लोक में जाते हैं और सुख दुख को भोगते रहते हैं, और हमारी उपासना करने वाले हमारे लोग को प्राप्त होकर के कभी वहां से च्युत गिरते नहीं है। जगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए देवताओं को आदर तो करो किंतु समझो जो उनके अंदर में मेरी शक्ति कार्य कर रही है। इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यज्यमाम एकम शरणम व्रज। चींटी का भी एक आदर करो किंतु ये समझो सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले मेरे भ्रूभंग से होता है और जितनी शक्तियां जो देख रहे वो सब मेरी शक्ति से संचालित होता है। माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। जो केवल मेरी आराधना करता है वो माया को सहज ही तर जाता है। माम एव मुझे ही कौन भक्ता है, कृष्ण है, इस चीज को समझो। इसलिए इंद्र की पूजा बंद करके उन्होंने मुक्त। इसी तरह से अघासुर नाम का एक बड़ा भारी अजगर, मीलों लंबा, मानो आकाश में एक मुख और दूसरा नीचे, कृष्ण को निगलने के लिए तैयार था सखाओ, और गायों ने तो उसके अंदर में प्रवेश कर लिया। कृष्ण के लिए वो बंद नहीं किया मुख, कहा जा रही मेरी सखा मरे और गायें, बस झट कृष्ण भी उसके मुख में चले गए और गले में ऐसे लटक गए, अटक गए, जो बाहर न हो भीतर न हो आग का पिंड जैसे जलता है, बस प्राण उसके निकले। जिसको जोगी लोग इतना ध्यान करते हैं हृदय में नहीं आते, या साक्षात रूप में कृष्ण उसके अपने परिकरों के सहित में चले जाएंगे, कितनी बड़ी भारी कृपा है। इसलिए मरने पर उसमें कोई दुर्गंध नहीं हुआ, उसमें कोई भी दुर्गंध नहीं। ऐसा क्यों हुआ, उसने कौन सी तपस्या की? अरे पुतना उसकी बहन थी, इसलिए उतना मैया का वेश बना करके गई, इसलिए उसी का भैया उसको गति क्यों न हो, इसलिए उसको भी गति दे दी, क्योंकि उसकी भाई बहन ने कृष्ण की मां बन करके गई, बस वेश बनाया इतने से ही। और यदि सचमुच में मां बन करके जाती तो न जाने क्या होता, इसलिए इन सब असुरों को गति दी। अंत में जब वो बड़े हुए तो एक दिन कृष्ण ने शाम के समय, अवरात होने जा रही है, पूर्ण चांद हुआ पूरब की तरफ में, लाल लाल किरणों को बिखेरते हुए मानो पूरब दिशा को अपनी प्रिया समझकर गुलाल लेकर तो उसके मुख में अबीर डाल रहा है। ऐसे ये पूर्व दिशा को यह रंग रही थी चंद्र की किरणें। उसी समय भगवान तारात्री उत्फुल्ल सर्वोत्फुल्ल मल्लिका रंत मनश्चक्रे, उस समय में कृष्ण ने गोपियों का स्मरण किया और झट उन्होंने बंसी उठाई और बड़े सुंदर रूप से बड़ी मीठी तान उस पर छेड़ी। गोपियों ने समझा जे हमें बुला रहे हैं, किसी ने समझा हमें बुला रहे हैं। सभी गोपियों ने उस अव्यक्त स्वर को सुन करके सभी एकदम दौड़ी, जो जो काम को कर रही थी उस काम को छोड़ दिया, कोई घर को लीप पोत रही थी बस उसी समय काम को छोड़ दिया, कोई रोटी बना रही थी तवे पर रोटी छोड़ दिया और चल पड़ी, कोई श्रृंगार कर रही थी बाएं आंख में अंजल लगाया था दाहिने आंख में अंजल लगाएगी अधूरा छोड़ दिया, कोई कपड़े पहन रही थी और उसका अंचल लटक रहा था बस उतना ही आधा पहनी और चल पड़ी, कोई सुन करके गले का हार कमर में पहन लिया और कोई कमर का हार कमर का करधनी गले में डाल ली। इसी प्रकार से सभी कामों को छोड़कर कोई पतियों की सेवा कर रही थी बस उसने भी छोड़ दिया। सभी लोग मोहित होकर के दौड़े। अजगमो अन्यो अन्नम अलक्षितो जमा, जो जो काम को कर रही थी छोड़कर के अकेली चली, एक ही नहीं लाखों लाखों गोपियां दौड़ी। बंसी की ऐसी अद्भुत तान यशोदा मैया ने नहीं सुनी, नंद बाबा ने नहीं सुना, किसी सखा ने भी नहीं सुना, केवल उन गोपियों ने सुना जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। वहां पर पहुंची, कृष्ण ने कहा स्वागतम वो महाभावा, करवाणी किम ओ महाभाग्यवती गोपियां, बड़ी अच्छी बात है तुम लोग यहां आई, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तो तुम्हारे लिए मैं क्या करूं। गोपियां चुपचाप खड़ी हैं, कृष्ण ने देखा इनका श्रृंगार अद्भुत रूप में बदला हुआ, अद्भुत और लग रहा। एक आंख में काजल, दूसरे में नहीं। कमर की करदनी गले में और गले की काहार करदनी में। वस्त्र कोई ठीक नहीं, कोई उल्टा कोई सुल्टा इधर से लगाया हुआ है। कृष्ण मुस्कुराए, बोले जैसे हो, बहुत अच्छा, तुम्हारा स्वागत है, जीव मात्र का स्वागत है, जो हमारे लिए एक पग चलता है, मैं इसके लिए लाख पग चलता हूं। यह कृष्ण की प्रतिज्ञा है। जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजाम, हम गीता में ये कहते हैं। थोड़ा सा यदि कोई कृष्ण का भजन करता है तो उसे 10 गुना वो और आगे चले आते हैं, और यदि एक कदम कोई पीछे हटता है तो वो 10 कदम पीछे हट जाते हैं। ये भी मुश्किल है। इले गोपियों को कह रहे हैं स्वागत है तुम्हारा, ओ ये तो बड़ी रात है, बड़ी अंधेरी रात, किंतु रात क्या थी, पूर्णिमा की चांद। कृष्ण, अघोर रात, बहुत घोर रात हुई, अरे इसमें जीव जंतु होंगे, और तुम घर में छोड़कर के बच्चों को रोती हुई, पतियों को छोड़कर के, पिता माता सास ससुर को छोड़कर, और तुम लोग चली आई, ये बात ठीक नहीं। तो बुलाया क्यों, क्यों बुलाया गोपियों ने कहा, किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे मन में सोची, जब तो बुलाया क्यों। कृष्ण ने कहा, जो देखो, पति यदि लंगड़ा दूल्हा कुबड़ा और सर्वोपरि यदि गरीब हो, उसके पास में पैसे न हो, कमा नहीं सकता, अंधा भी हो, उसे कोढ़ भी हो जो एक गई हो, दुशील हो, दुर्भग हो, दुशील और दुर्भागा भी हो, कभी भी स्त्रियों का कर्तव्य नहीं कि अपने पतियों को छोड़ करके दूसरी जगह जाए। खैर, तुम लोग वन देखने को आई थी, जंगल को देखने के लिए, जमुना बड़ी सुंदर रूप से प्रवाहित, कल कल करके प्रवाहित हो रही है, देखो तो उसमें कमल के फूल खिले हुए हैं, कोयल कुहक रही है रात में, मोर नाच रहे हैं, हिरने फुदक रहे हैं, और सुंदर सुंदर चंद्र की किरणें प्रकाशित हो रही है, कुंद और सब फूल खिले हुए हैं। ये शोभा तो देखने के लिए आई, अब तो देखना हो गया ना, अब लौट जाओ घर में। गोपियों ने कहा, ये सचमुच कर रहे हैं या कोई खेल कर रहे हैं, ये हैं तो बड़े धूर्त, इनकी बातों का पता नहीं चलता, ये किस लिए किस तरह से करते हैं, हंसी दिल लगे भी बहुत करते हैं ये, तो न जाने किस लिए ऐसा कर रहे। तो थोड़ा सा देर चुप रही। कृष्ण, अभी गई नहीं आप लोग, अब तो जाना चाहिए ना, अपने घरों में लौट जाओ। एक गोपी बोली, लौट तो जाएंगी कि तुम्हारे पैर ही नहीं जो चल रहे, हमारे पैर इधर ही नहीं चल रहे, और यदि जबरदस्ती हम ले जाएं तो जाकर के क्या करें, मन तो यहां रह जाएगा, हमारा मन लौटा दीजिए, हम लोग चले जाएं खुशी से, हमारा मन अब हमारे पास में नहीं रहा, इसलिए जब तक आप मन नहीं देंगे हमारा, हम नहीं लौटेंगे। दूसरी बात, आपके जैसा जगत में गुरु कौन मिलेगा जो इतना सुंदर ज्ञान दे, जो पतियों की सेवा करनी चाहिए, कितना सुंदर आपने दिव्य ज्ञान दिया। तो वेदों में शास्त्रों में ऐसा देखा जाता है कि गुरु और भगवान भी यदि खड़े हों तो किसको प्रणाम करना चाहिए, गुरु को। तो आपने इतना दिव्य ज्ञान दिया कि पतियों की सेवा करना परम धर्म है, लंगड़ा दूल्हा जैसा भी हो, तो इतने दिव्य ज्ञान देने वाले गुरु को तो जरूर पहले सेवा करनी चाहिए। तो हमारी सेवा पहले आपके चरणों में समर्पित है, इसके बाद जैसा होगा पतियों की हम सेवा करेंगे, ठीक है ना। कृष्ण से पूछ रहे हैं, यदि यह बात गलत है तो आपने ऐसी विधान क्यों दी, ऐसी विधि क्यों बनाई। कृष्ण सुनते रहे, मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं और बड़े गंभीर भी बने हुए हैं। दूसरी गोपी कहती है, सुनते हैं कि आपने 1 करोड़ वर्ष पहले गीता का ज्ञान सूर्य को दिया था, तो उसमें हमने सुना है कि आपने कहा है कि जे जथांग माम प्रपद्यन्ते ताम तथा, जो जिस रूप में हमारा भजन करता है उसी रूप में उसकी पूजा को ग्रहण करके उसको कृतार्थ करता हूं। तो हम आपके पास में आए, गुरु के रूप में हम आपकी पूजा करनी, और आप यदि ग्रहण नहीं करते तो यह धर्म आपको लगेगा, हमें नहीं, यह धर्म हमारा नहीं रहेगा। दूसरी बात, आप यदि हमारी पूजा ग्रहण नहीं करते तो आपको यह धर्म पाप आपको प्रवेश करेगा जो हमारी पूजा आप नहीं ग्रहण करते। आपने ये भी कहा है सब धर्मों को छोड़ करके हमारी केवल शरणागत हो जा, तो हम तो यही कर रही हैं, दूसरी बात थोड़े कर रही, सर्वधर्मान सब धर्मों को छोड़ करके हम तुम्हारे पास में आएंगे, और यदि ग्रहण नहीं करते तो आप पर कोई भी विश्वास नहीं, आप सबसे झूठे और लवार हैं, पक्के नंबर। इस तरह से कृष्ण ने जो कहा था उसका सब खंडन करके गोपियां कह रही हैं। एक गोपी कह रही है, देखो इसमें हमारा क्या दोष, हम आई हैं और अपने धर्म को छोड़ रही हैं, हम तो देख रही हैं जैसे वृंदावन में आपका इतना सुंदर रूप और इतनी मीठी बंसी ध्वनि, जो देख करके प्राणी समस्त जो चलने वाले हैं वो जड़ हो जाते हैं, जो जड़ हैं वो जंगम हो जाते हैं, चलने लगते हैं, जमुना चलने वाली वो ठहर जाती है, चल नहीं पाती, और जो वृक्ष हैं जड़ हैं उनकी ऐसे गालियां उतर आती हैं, फूलों से फलों से भर करके आपका स्वागत करते हैं, हिरणी जो भाग जाती है मनुष्यों को देख करके आपके तरफ में आ जाती है, गायें एकदम जड़वत होकर के आपकी बंसी की आवाज को कानों में ग्रहण कर रही हैं, और उनके मुख का कवल कौर में घास बस गले में अटका रहता है, ना बाहर जाता है ना भीतर जाता है, बछड़े भी ऐसे ही दूध जो गले में है वो बस वही रह जाता है, नहीं ऊंचा ऊंचा ऊपर में आता है ना नीचे जाता है, जड़ चेतन बन जाता है, चेतन जड़ बन जाता है, उनका धर्म हो जाता है। तो हम तो कोमल जाति की स्त्रियां, कोमल हमारा सरल सहज स्वभाव, हम तो सुंदरता देख करके ही मुग्ध हो जाती हैं, तो आपने इतना सुंदर रूप बना करके हमारे सामने क्यों आए, और इतनी बंसी की मधुरता आपने क्यों सुनाया, यदि हम अपने पतियों को छोड़ करके हमारा कुछ अधर्म हुआ तो इसका भागी आप बनेंगे, आप ही को पाप लगेगा, हमें नहीं। कृष्ण निरुत्तर हो गए, उन्होंने यज्ञ पत्नियों को भी पहले लौटा दिया था, जाओ अपने पतियों की सेवा करो, गोपियों को लौटा नहीं सके, रास आरंभ हुआ, एक कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 धारण करके नित्य करने लगे। कृष्ण ने पंचम सुर में गान गाया, पंचम सुर जानते हैं, सारे गामा पा, और इन लोगों ने सप्तम स्वर में पंचम स्वर से अधिक कोकुल से भी माप कर गोपियों ने जो ऐसी उठाई कि कृष्ण से भी और अधिक ऊंचा स्वर खोले गई, ध्रुपद धमारा आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, जिसमें ध्रुपद बहुत ही जोश, गले में साधना की जरूरत होती है, कृष्ण ने धमार रूप में लिया, इन्होंने उसी कीर्तन को गान को ध्रुपद रूप में लेकर के इतना ऊपर ले गई जो कृष्ण ने कहा साधु 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 शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश। कृष्ण से रहा नहीं, पर ब्रह्म उनके सामने नाचने और गाने में भी हार गए। इस तरह से रास आरंभ हुआ, 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 कृष्ण बन करके एक नया आदर्श स्थापन किया, ऐसा कोई भी आज तक नहीं जिस किसी भगवान के अवतार ने नहीं किया, जो आए उसका मन पूर्ण कर दें। राम के पास में आप लोग सुने होंगे कि राम ने सीता जी का प्रत्याग कर दिया, जब प्रत्याग कर दिया वाल्मीकि के आश्रम में चली गई, अंतिम लीला में राम के लक्ष्मण जी छोड़ आए, बेहोश हो गई सीता जी, हमें सारा जीवन के लिए प्रत्याग कर दिया, मैंने क्या दोष किया था। यदि एक पुरुष ने जबरदस्ती हमें स्पर्श कर लिया, हमारा मन तो उसे स्पर्श नहीं किया और हमें छोड़ दिया, ठीक, उनकी इच्छा के लिए हम अब राजभवन में नहीं जाएंगे। उनको दो पुत्र पैदा हुए, वो घर से ही गर्भवती थी, वाल्मीकि के आश्रम में दो पुत्र हुए, लव और कुश। उसे बड़ा करने लगी और वाल्मीकि जी उन बच्चों को पढ़ाने लग गए और वाल्मीकि जी उनको अपनी पुत्री मान करके अपने आश्रम के एक पास में, जहां और भी वृद्धा महिलाएं भजन साधन करती थी, उनके मोहल्ले में रख दिया। कुछ दिन बीते, बीतने के बाद में रामचंद्र जी की इच्छा हुई कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। वशिष्ठ को बुलाया, वशिष्ठ से पूछा, दे गुरु जी मेरी इच्छा है कि मैं यज्ञ करूं। मैंने, तुम यज्ञ करने के अधिकारी नहीं, क्यों? तो तुम स्त्री को तो वन में भेज दिया, अकेले पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, ऐसा विधान नहीं है। गुरु जी आप कैसे भी विधान एक बनाइए, कैसे विधान बन, तो एक दूसरी स्त्री से शादी कर ले। कहा जी ये तो मैं नहीं कर सकता, सीता के अतिरिक्त दूसरे से शादी, तो फिर यज्ञ नहीं कर सकता। सीधी बात, गुरु जी मैं आपको चरणों में निवेदन करता हूं, आप जरूरी हमसे, हमको यज्ञ करना है, आप कराइए, कोई भी ध्यान बनाए। क्यों नहीं शादी कर सकता, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी, तो तुम एक और किसी से शादी कर लो, तो ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा तुम नहीं कर सकते, फिर कैसे होगा? अच्छा एक बात करो, एक सीता की सोने की प्रतिमूर्ति बनाई है और वो तुम्हारे बाएं तरफ में बैठे, उसे गठबंधन हो और तुम यज्ञ करो, ये मुझे स्वीकार है, ये तो स्वीकार है। सोने की मूर्ति बनी, बहुत अलबेली सीता जी जैसी ही देखने में, और सीता जी कहां भी हैं, जंगल में है बनी, और उनके साथ में गांठ जोड़ करके यज्ञ संपादन हो रहा है। उस समय में यज्ञ होते होते दोपहर में भी शाम होता था और सवेरे यज्ञ होता था, सवेरे 8 से लेकर के 10 तक 12 तक होता था, और इसके बाद में विश्राम का समय कुछ लोग प्रसाद पा करके 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक हरि कथा होती थी। तो उसी समय में वाल्मीकि के दोनों शिष्य लव और कुश, उनको कोई नहीं जानता कि राम के बेटे हैं, और भरी सभा में जिसमें कौशल्या कैकेयी इत्यादि, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम और लाखों बंदर भालू और दूसरे पुर के लोग थे बैठे हुए, ये दोनों बच्चे गुरु जी की आज्ञा से वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं। सीता का वनवास के पहले राम लक्ष्मण और सीता का वनवास आरंभ हुआ, सभी लोग रोने लगे, आंसुओं से भर हो गए, तर हो गए, जिस समय ये लोग वन को जा रहे हैं, और महाराज दशरथ भी मर गए, अयोध्या सुनी पड़ गई विधवा की भांति। जब वो प्रसंग कहने लगे, सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर के रोने लग गए। इसके बाद में जब कथा समाप्त हुई, राम ने आदेश दिया, लक्ष्मण एक बात कर, इन दोनों बच्चों को पूछो तो इसके माता पिता का नाम क्या है, इनका परिचय क्या है, और इनको सोने के थाल में मणियों से भरा हुआ इनको दे दो, बहुत प्रचुर अर्थ दो, ये सारी सभा का मनोरंजन किया है। लक्ष्मण कह जे बेटे ये तो बतलाओ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तुम्हारी मैया का नाम क्या है। कुश ने उत्तर दिया, लव ने, ये महात्मन आप तो बड़े वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, ब्रह्मचारियों का नाम नहीं, उनका पिता का नाम नहीं पूछना चाहिए, उनके गुरु का नाम पूछना चाहिए। हम लोग तो देखते हैं कि ब्रह्मचारी हैं, हमारे गुरु का नाम पूछिए, हमारे पिता और माता का नाम सुनने से क्या होगा, ज्ञान की कुछ बातें सुनिए। लक्ष्मण जी लज्जित हो गए, ठीक कर रहे हैं, मेरे गुरु जी का नाम वाल्मीकि है।
अच्छा
ठीक है, परिचय नहीं दिया। और सब लोग देख रहे हैं कि यदि राम का कोई लड़का होता ना तब ऐसा ही होता, ठीक राम जैसे ही मूर्ति, वो बड़े हैं ये छोटा है, दोनों ही। सब लोग ने अनुमान किया कि ये शायद हो सकता है कि राम का ही लड़का हो, सीता कहीं पास में है। कौशल्या जी के आंखों में आंसू छल छला है, राम के भी आंखों में आंसू छल छला है, किंतु पता नहीं चल सका ये किसका बेटा है। संदेश सबको हुआ, रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी को बुलाया, कहा जिसे मालूम होता है कि सीता कहीं आपके पास तो नहीं, मैं सीता जी को भेंट करना चाहता हूं, आप उसे सीता जी को उपस्थित करें मेरे सामने। बस वाल्मीकि गए, सीता जी से कहा जी बेटी राम तुम्हें बुला रहे हैं। इसके पहले की बात थोड़ी सी छूट गई, जब लव कुश वहां से लौट करके घर पर गए, मैया देख, अरे बेटी आज आए नहीं, बहुत देर हो गई, विलंब हो गया, घर से बाहर आ रही, भीतर जा रही, बाहर भीतर से, अब आएगा, अब आएगा। इतने में दोनों बच्चे जब आए तो उनको दोनों को अपनी गोदी में, एक को बाएं एक तरफ से दाहिने को बैठा दिया। बेटा बहुत देर हो गई मैया, आज हम लोग गए थे किसी राजा को, आया है यज्ञ कर रहा है, वहीं पर हम लोग रामायण का पाठ करने लगे, गुरु जी ने जो शिक्षा दी है, वीणा पर हम लोग गान करते, सभी लोग रो रहे थे, न जाने क्यों मेरी समझ में नहीं आया। और इसके बाद में मैया एक बात और, वहां पर एक सोने की मूर्ति देखी, ठीक तुम्हारे जैसे ही देखने में, वो बोलती नहीं थी, तुम बोलती है। इतने सुनते ही सीता जी रो पड़ी, आंखों में आंसू भर आए, कहिए मैया रोने लगी क्या बात हुई। उन्होंने अपने दुपट्टों से अपनी मैया का आंख का आंसू पूछा, मैया और रोने लगी, कैसे बतलाए जे राम हमारे पति हैं और हमको छोड़ दिया है, नहीं कर सकती। इसके बाद में राम ने बुलाया, वो गई थी, ये प्रसंग अब दूसरा हो जाएगा, इसलिए हमको जितना उदाहरण की जरूरत थी उतना ग्रहण किया, समय होता तो राम की ऐसी सुंदर मनोहारी लीलाओं को मैं आप लोगों को सुनाता, बस आज ही का 6 बजे तक, 6:15 तक का समय है। उस समय में सीता जी सुनकर के यही कह रही हैं, राजा राम ने रानी सीता को छोड़ा है, राम ने अपनी प्यारी सीता को नहीं छोड़ा, यदि छोड़ा होता तो फिर हमारी मूर्ति बना करके और यज्ञ करते ये वैद कभी नहीं होता। राम की कहानी भी बड़ी करुण है, जो सुनेगा वो रोएगा, और कृष्ण का यदि रो दिया तो जीवन भर आंसू नहीं सूखेंगे। अद्भुत ये सब लीलाएं हैं कृष्ण की। तो रास की मैं बातें कर रहा था, अंत में राम ने सीता को छोड़ा तो, किंतु कृष्ण नहीं छोड़ सकते, कृष्ण को गोपियों ने परास्त कर दिया उत्तर प्रत्युत्तर में, इतना इनका प्यार कृष्ण के प्रति प्रेम है, ऐसा विश्व में किसी का नहीं देखा जाता। इसलिए इनकी जब कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा कृष्ण, राधा जी का नाम है, जो रुक्मिणी सत्यभामा का जिनसे विवाह हुआ था नहीं आता। इनका प्रेम अगाध अनंत था, यदि प्रेम करना है कृष्ण के साथ में तो ऐसे ही प्रेम किया जाए। रास होने लग गया, सब गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं कृष्ण। थोड़ी देर में देखा जितनी गोपियां थीं, उन्होंने सोचा जी आज हमारा परम सौभाग्य है, सुहाग, स्त्रियों के लिए एक सुहाग होता है। सुहाग माने क्या, यदि स्त्री के कहने से पति उसकी सभी बातों को मानता है और किसी को प्यार नहीं करता, अपनी स्त्री को भी प्यार करता है, जो कहती है उसको मान लेता है, तो स्त्रियों के लिए सुहाग है, सौभाग्य है। वो स्त्री संसार में सबसे सुखी है जिसका पति वशीभूत होकर के इच्छा अनुसार में चलता है, और जो अपनी स्त्री की बात नहीं सुन करके दूसरी स्त्रियों से भी प्यार करता है और उसको मानता नहीं है, नेग्लेक्ट करता है, तो स्त्री अपने को बहुत दुर्भाग्य समझ करके किरोसिन ऑयल या कोई चीज छिड़क करके आग लगा करके मर जाएगी। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, और सब कष्टों को सह कर लेंगी, किंतु पति की उपेक्षा जिसके लिए सर्वस्व दिया है उसकी उपेक्षा नहीं सह सकती। यहां पश्चिम में तो अभ्यास हो गया है, रोज ही तलाक होते हैं, कभी पति करता है तलाक, कभी स्त्री तलाक करती है। ये हमारी वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं था। एक बार यदि मन से भी कह दिया कि उसकी स्त्री हो गई तो उसकी स्त्री सदा के लिए हो जाती थी। इस तरह से राष्ट्र हो रहा था तो सब स्त्रियों ने ऐसा समझा, गोपियों ने, जो कृष्ण हमारे ही साथ में नित्य कर रहे हैं और किसी के साथ में नहीं। उन्होंने देखा कि केवल हमारे ही पास में हमारे हाथों में हाथ लगा करके नित्य कर रहे हैं और केवल एक ही बीच में राधा जी वो देख रही हैं। जिधर उनकी नजर जाती है उधर ही देखते हैं कि कृष्ण उसके साथ में, उसके साथ में, उसके साथ में, और अपने तरफ में देखते हैं तो अपने साथ में। अच्छा, ये बहुत भूत है, जब मैं जिसके तरफ देखती हूँ उसी के साथ में नित्य कर रहा है, हमारे साथ भी उसके। अच्छा, तो ये तो कहते हैं तू ही हमारी सबसे बड़ी प्यारी है और हमको इतनी प्यारी नहीं है। आज वहां प्यारी कहां गया, सबके साथ में बराबर ही सम्मान कर रहे हैं और जो गोपियां देख रहे हैं केवल हमारे साथ ही में नित्य कर रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज है। कृष्ण का ऐसा है कि प्रत्येक जीव ऐसा समझता है कि हमारे प्रति ही कृष्ण अधिक प्रसन्न है। गुरु के लिए भी यदि गुरु सदगुरु हैं तो ऐसे ही बात होती है। सभी शिष्य ऐसा समझते हैं कि गुरु जी हमको ही सबसे अधिक स्नेह करते हैं। ये गुरु जी की विचित्र बात है। साधारण गुरु की बात नहीं कह रहा है, कलयुग के गुरुओं की बात मैं नहीं कहता, मैं सच जो सचमुच में जो गुरु होने योग्य है, बोनाफाइड गुरु है, उनके लिए कहता हूं। सबको प्यार करते हैं, वैसे कृष्ण सबको प्यार करते हैं। गोपियों ने सौभाग्य मत से ये देखा, ये तो राजा जी के साथ में भी नहीं, दूसरे गोपियों के नहीं, ये मेरे साथ में नित्य करें, सबको ऐसा अभिमान हो गया। सौभाग्य मत, और राधा जी को क्या हुआ मान, आज सबके साथ में और हमारे साथ में भी एक समान। तत् सौभग मदम दीक्षमानं चके सब और तत्प्रांतर दीयत। देखा जैसे अब राष्ट्र होगा नहीं, क्योंकि सब लोगों को, गोपियों को गुमान, गुमान समझते हैं, गुमान नायिकाओं को गुमान हो जाता है, वैसे इनको गुमान हो, और राधा जी को हुआ मान। इसलिए कृष्ण ने उनके मान को प्रसादन करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनके मन को प्रसन्न करने के लिए और गोपियों का अभिमान तोड़ने के लिए, जो मैं राधा जी को ही सबसे अधिक प्यार करता हूं ये दिखनाने के लिए वो उसी समय में अंतर ध्यान हुए। यही अंतर ध्यान हुए तो हम सब गोपियां कहां कृष्ण, कहां कृष्ण, बस राष्ट्र खत्म हो गया। सभी कृष्ण को ढूंढने लगी, पागल हो गई, पेड़ों से पूछ रही है ये कृष्ण इधर गए, तुलसी तो जरा बता तो ये कृष्ण इधर गए। एकदम भूल गई, शरीर की शुद्ध बुद्धि खो गई, स्वभाव एकदम बदल गया। कोई गोपी पेड़ों, बड़े ऊंचे पेड़ों से पूछे तुम तो बड़े लंबे हो भाई, बतलाओ तो ये कृष्ण इधर से गए हैं, बड़े प्रसन्न दिखते हो, हंस रहे हो, माने फूल खिले हुए हैं उसमें, हंस रहे हो, जरूर कृष्ण तुमको स्पर्श करके इधर से गए। कोई हिरणों से पूछ रहे, हिरण अरे तुमने देखा बड़ी प्रसन्न हो रही हो, इधर से कृष्ण गए तो नहीं, बाव ऋषि हो गए। इस तरह से पेड़ों से इधर उधर पूछती हुई, अंत में देखा क्या, दो पैर देख रहा, कृष्ण का सुंदर पैर देखा और पहचान गई ये कृष्ण के चरण चिन्ह है। थोड़ी देर के बाद में देखा, अरे उन चरणों के बीच में एक छोटा सा और बड़ा ही सुंदर पैर है, ये किसका है, ये तो किसी महिला का मालूम पड़ता है, ये किसका, ये तो मालूम होता है किसके महिला का, तो ये अकेले नहीं गया, उसके साथ में कोई और एक तरुणी कोई को भी गई है। निश्चित ही इस गोपी ने भगवान की इतनी आराधना की होगी जो कृष्ण उसे एकांत में लेकर के गए हैं। थोड़ी देर के बाद में देखा, कृष्ण के पैर ही केवल हैं उस महिला का पैर, और जरा वो नीचे गहरा दबा हुआ, ओ वो स्त्री थक गई होगी इसलिए उन्होंने गोदी में उठा लिया होगा निश्चित रूप में, इसलिए इसके पैर नहीं दिख रहे। थोड़ी देर के बाद में देखा ये फूल कुछ गिरे हुए हैं, ओ उसने माननी कहा यहाँ पर कृष का श्रृंगार किया है और उसमें फूल लगाए होंगे, क्योंकि नीचे फूल नहीं है उनमें, ऊपर में फूल है। और देखा कृष्ण की एड़ी ऊपर उठी हुई और पंजे का गहरे छाप, ओ एड़ी को उठा करके और जरूर ये फूल तोड़ रहा है और स्त्री को उसने लगाया है। चलो चलो आगे और बढ़े। आगे गया तो देखा जे वो श्रीमती राधिका जी बेहोश पड़ी हुई है। अरे ये कैसे पड़ी हुई है, इसी को लेकर के गया था, ये बेहोश पड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया, पानी का छींटा दिया, हवा पंखे किए, तू ऐसे यहां पर क्यों पड़ी है। अरे मैं क्या कहूं, मुझे हुआ कि ये कृष्ण मेरा श्रृंगार कर रहे हैं और इतना मेरा मान कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं चल नहीं सकती, इसलिए जहां ले चल रहा है मुझे ले चलो। जब ठीक है हमारे कंधे में बैठ जाओ, जब भी बैठे वो कंधे पर बैठे, इतने में देखा जी कृष्ण नहीं कहा नहीं चले गए। और मैं बिलबिलाती भी रो रही हूं तभी से, क्यों ऐसा हुआ। राधा जी ने कहा जी हमारे लिए ये गोपियां सब कुछ त्याग कर दी हैं, इसलिए इनके बिना अकेले में इनके साथ में नहीं रह सकती, उन्हों का रहना भी जरूरी है, इसलिए छल किया। और कृष्ण कहीं बाहर नहीं गए, जरा हट गए, आंखों से उछल करके झाड़ियों में छिपे हुए, और ये रोने लगी, सभी लोग रोने लगे फिर से। इसके बाद में तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरेड़ितम कल्म शापहम समर्ण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ते भूरिदा जना। ये श्रीमद भागवत का दशम स्कंध का प्राण है, पांच प्राण हैं, इसी को राजपंच अध्याय कहते हैं। और ये 31वां अध्याय एकदम बीच का, 29 और 30 और इसके बाद में 31, इसके बाद में 32 और 33, ये पांच हैं, ये 31वां का है। समस्त आचार्यों ने इनकी बड़ी भारी सुंदर सुंदर टीकाएं की हैं, समय नहीं है इसलिए इसका अर्थ नहीं कर रहा। इतना अद्भुत है, महाप्रभु सुनते ही एकदम भाव में विभोर होकर के गिर जाते थे, इतना अद्भुत और गाढ़ा इसका अर्थ है। थोड़ी सी झलक मैं देकर के फिर आगे बढ़ता हूं। तब कथा अमृतम गोपियां कह रही हैं, एक पक्ष की कह रही हैं, दो पक्ष की, कितनी पक्ष की गोपियां हैं, पहले पक्ष की कह रही। तब कथा अमृतम तप्त जीवन, तुम्हारी कथाएं ही अमृत हैं। यदि कोई घर में किसी का आदमी मर गया हो, दुखी हो, तरह तरह की समस्याएं हो, तो यदि भगवान की कथा आएंगी तो उसे सांत्वना मिल जाती है, वो सुखी और शांत हो जाता है। जैसे घर का जला हुआ कोई व्यक्ति अमृत मिलने से उसे शांति मिल जाती है। संसार में ताप है सर्वत्र, जीवन मरण का ताप, वृद्धावस्था का ताप, दुखों का ताप, पति का दिया हुआ ताप, पड़ोसी का दिया हुआ ताप, निर्धन होने का ताप, कितनी जटिल जटिल समस्याएं हैं, बिजनेस कम हो जाने का, बिजनेस फेल हो जाने का, इत्यादि का लाखों ये ताप है संसार में। सात्विक राशिक और ताप, ये त्रिविध ताप है, आदमी झुलस जाता है। उस समय कृष्ण की कथाओं का भी सहारा होता है, वो अमृत के समान है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी रीड़ितम, कभी मैंने सुखदेव गोस्वामी जी, ब्रह्मा इत्यादि शंकर जी ने, नारद जी, ये कभी लोग हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं कैसा भी पापी कैसा भी दुखी जीव हो, भगवान की कथाओं को सुनते ही उसका जीवन एकदम नया हरा भरा हो जाता है, इसलिए भगवान की कथाएं अमृत है। कथा एवं अमृतम, ऐसा अमृत है, स्वर्ग का अमृत इसके सामने तुच्छ है, उसका पीने से काम क्रोध लोभ मद मोह रहता है, किंतु इस कथा रूपी अमृत पीने से हृदय शीतल शांत हो जाता है। इंद्र ने अमृत पान किया, किंतु वो क्रोधी है, लड़ता है, झगड़ता है, स्त्रियों के पीछे भी भागता है, हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष से डरता है और ब्रह्मा जी से वर प्रार्थना करता है। तो इसमें शोक मोह भय इत्यादि सभी हैं। किंतु कथाओं को सुनने वाले नारद जी जैसे इनकी कोई कामना नहीं, सुखदेव गोस्वामी का परम शांत है, जिनमें जितनी ही इच्छाएं हैं उतना ही दुखी है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है भगवान की सेवा के अतिरिक्त उनको कोई भी दुख नहीं है, कोई भी वांट नहीं है, कोई डिजायर नहीं है, वो दुखी नहीं है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी रीड़ितम कलमशापम। एक भगवान की कथा सुन ले उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और संसार में वही सबसे बड़ा दानी है जो भगवान की इन कथाओं को दान करता है, बिना पैसे का, बिना किसी लोभ का, बिना किसी सबका कल्याण करता है। भूविदा जना श्रीमादातम, भगवान की श्री को कथाओं का विस्तार करने वाला ही जगत में सबसे धनी है, सबसे बड़ा दानी है जो भगवान की कथाओं का दान करते हैं। वो जगत के समस्त लोगों को भव सागर से पार करा करके कृष्ण के चरण कमलों का प्रेम रूपी मधु उनको प्रदान कर देता है। इसलिए सचमुच में भगवान की कथाओं को दान करने वाला व्यक्ति संसार में सबसे भूरी दा देने वाला है। उसके समान और कोई जगत में दाता नहीं है। दूसरी तरफ में एक विपक्ष की सखी कह रही है, तव कथा अमृतम। और हमने भूल करके कृष्ण नाम को क्यों सुना? के बार सुनाई लो कृष्ण नाम, काने रफी तरे दिए मरम पसीले गो आकुल करी लमोर प्राण। मेरे जीवन को उथल पुथल कर दिया ये कृष्ण की कथाओं ने। हम पहले घर में बड़ी सुखी थी, हम लोग बड़े सुखी थे, जिस समय से ये कृष्ण नाम काम ने हमारे जीवन को उलट पुलट कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। मैं क्या करूं, झाड़ू नहीं दे सकती, रसोई नहीं बना सकती, पति से प्रिय रूप में बातचीत नहीं कर सकती, हमारा जीवन ही उथल पुथल कर दिया। निश्चित रूप में ये कथाएं अमृत नहीं है, ये विष है। तब कथा मृतम, अमृत को हटा दिया, क्यों? आकार इसमें ले लिया। तब कथा अमृतम, क्यों? हम इसकी उदाहरण है। आज कृष्ण की कथाएं हमारे कान में नहीं सुनती तो मैं यहां पर किस लिए आती, और ये हमें छोड़ करके चले गए, और आज हम विपत्ति की मारी अपना सर्वस्व धर्म कर्म पति का पार्थिव धर्म और लज्जा लोग सभी